भगवान कहते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म न एति मामेति सो अर्जुन। नौवां श्लोक है चौथे अध्याय का। तो भगवान कहते हैं कि अगर मेरा कोई जन्म के बारे में जान जाए, जन्म कैसा है, दिव्य है। दिव्य का मतलब क्या, यहां शंकराचार्य जी कहते हैं जन्म माया रूपम, ये केवल माया है, ये केवल एक अपीयरेंस है, रियल में जगत नहीं है, उनका जन्म नहीं है, केवल माया रूप में। और कर्म क्या है, साधु परित्राण आदि, देखो उनका कर्म है केवल साधुओं की रक्षा करना। साधुओं की रक्षा करना मतलब धर्म की रक्षा करना, क्योंकि साधु के अंदर धर्म होते हैं, तो धर्म की रक्षा करना। उनका काम क्या है, धर्म संस्थापना काम है उनका। तो उनका जन्म जो है दिव्य है, कर्म बोलते हैं वो भी दिव्य है। यो व्यक्ति बोला केवल जानना है, कुछ करना नहीं है। और यो व्यक्ति ओनली यू हैव टू नो कि भगवान का जन्म दिव्य है, कर्म दिव्य है, तो उससे क्या होगा, बोले आप भी जो है माम एति मेरे पास पहुंच जाओगे। देखो मां चौथे पाद में है ना, माम एति सो अर्जुन, मेरे पास पहुंच जाओ केवल जानने से। नौवें श्लोक में और दसवें श्लोक में कह दिया मद भावम आगता, वो मेरे भाव में आ जाता है, मेरे जैसा ही हो जाता है। तो कैसे एकत्व तो होगा, बोले केवल दो तीन चीजें हैं, यो व्यक्ति केवल जान लो, केवल जानना और कुछ नहीं करना है। हम लोग एक्चुअली प्रॉपर थिंकिंग नहीं करते हैं, प्रॉपर इंक्वायरी नहीं करते हैं। सच पूछो तो हमारा भी जन्म नहीं है, हमारा जन्म भी दिव्य है। जैसे भगवान माया का रूप लेके आ जाते हैं, हमारा भी तो शरीर माया का ही बना हुआ है ना। कर्म भगवान कहते हैं जैसे हम कर्म कहते हैं वैसे आप भी करो। साधु परित्राण आया, साधु परित्राण धर्म की संस्थापना करो, धर्म को अपनाओ। धर्म के आपको चार डिफिनीशन बताई थी हमने, धर्म को अपनाना है, धर्म को अपनाना मतलब जो वैल्यूज हैं उनको अपने जीवन में उतारना है, तब धर्म आपका होगा। और धर्म की रक्षा करनी है। फिर कहते हैं त्यक्ता देहम, उसके बाद बोलते हैं देह अगर छूट जाएगा तो पुनर्जन्म फिर नहीं होगा। तो त्यक्ता देह का मतलब यहां क्या हुआ, मृत्यु। अगर मृत्यु होगी तो फिर वेदांत सिद्ध कैसे होगा। अगर त्यक्ता देहम पुनर्जन्म नहीं मिलेगा तो ये कैसे हमें पता लगेगा, फिर मरने के बाद में पुनर्जन्म हुआ कि नहीं हुआ क्या पता हमें। तो त्यक्ता देह का मतलब क्या हुआ यहां पर, तो यहां कहते हैं वेदांत कहता है कि एकत्व तो जानने के लिए मरना नहीं है, भगवान के साथ एकत्व तो जानने के लिए कि मेरी आत्मा ही ब्रह्म है, इसको जानने के लिए आपको शरीर नहीं छोड़ना है। क्या करना है, हमारी देह के अंदर सत्य बुद्धि है कि ये देह सत्य है, उस सत्य बुद्धि को छोड़ना ही देह की मृत्यु है। देखो हमारा इस देह के अंदर देहो हम कौन है, हम देह हैं, यही इसमें देह में हमारी सत्य बुद्धि है। और इस सत्य बुद्धि को छोड़ देना कि मैं देह जो है सत्य नहीं असत्य है, यही मृत्यु है देह की। गुरुदेव इसको कहते हैं कि इट इज ए मिस्टिक डेथ ऑफ ईगो, ईगो की डेथ है ये। मारना किसको है हमको, देहो हम, मैं देह हूं, और शुद्ध मैं कौन है, आत्मा है। तो तक्ता देहम का मतलब हुआ कि अपने अभिमान को अहंकार को इस देह के अंदर जो सत्य बुद्धि है उसको छोड़ो, उसको छोड़ देने से आपका और पुनर्जन्म नहीं होगा। सुभाषित में कहते हैं मरता मरता जग मुआ मरहू न जाना कोए, ऐसा मरना जो मरे काहे बहुरी मरना होए। सारे लोग मरते ही जाते हैं, मरता मरता जग हुआ, मरते ही जा रहे हैं, मरते ही जा रहे हैं। कैसे मरना चाहिए लोगों को ये नहीं पता है। लोग जन्म लेते हैं मगर कैसे जीना चाहिए बोले ये नहीं पता है। तो लोग कहते हैं दे स्पॉइल डेथ बाय थिंकिंग ऑफ लाइफ एंड दे स्पॉइल लाइफ थिंकिंग ऑफ डेथ। सारा जीवन हम यही करते हुए रह जाते हैं। तो रियल डेथ किसकी होती है बोले एक ज्ञानी की रियल डेथ होती है, बाकी सबकी फालतू मृत्यु है। ज्ञान में लेते रहते हैं, मरते रहते हैं। ज्ञानी कितनी बार मरता है? एक बार मरेगा बस। तो आपको जानना क्या है? जानना इतना ही है कि मैं आत्मा हूं, मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही अजन्मा हूं, मैं ही अमर हूं, हमारी कोई मृत्यु नहीं है। फिर आपकी मृत्यु कैसे होगी? और तो हो नहीं सकती। अगर आपने यही नहीं जाना तो फिर क्या होगा? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, फिर से पैदा होना होगा। या तो जान लो, व्यक्ति ओनली जानना है। देखो भगवान ने गीता में कई जगह बताया केवल जानना है, कुछ करना नहीं है, केवल जानना है। जानना है कि आप कौन हो, आप देह नहीं हो, आप वो आत्मा हो, बस इतना ही जानना है, यही ज्ञान है। और फिर हम देह की तरफ भागा थे, देह हैं हम, देह हैं। तो त्यक्ता माने लिटरल डेथ नहीं है, भगवान के पास जाने के लिए मरना नहीं है, केवल देह में सत्य बुद्धि को छोड़ना है, केवल देह में सत्य बुद्धि को छोड़ना है। अच्छा, इसको अगर छोड़ देंगे तो क्या है? बोला फिर मजा ही मजा है, इंटरटेनमेंट है। फिर देह की अगर सत्य बुद्धि को छोड़ दे फिर इंटरटेनमेंट है। देखो मैजिक होता है ना, मैजिक, मैजिक क्या होता है? सत्य होता है या असत्य होता है? मगर इंटरटेनमेंट देता है कि नहीं? कितना आनंद आता है बिना जैसे पूछो, कल कितना आनंद आया, मैजिक देखा, ताश के पत्ते चल रहे हैं, देखो ऐसा होता है। विनय जी के हाथ में एक बॉल दे दिया, बोला पकड़ के रखो इसको, फिर उसको बोला खोलो, 15-20 बॉल हो गए उनके हाथ से। मजा आया कि नहीं?
बहुत
मजा आया। देखो मैजिक है सत्य, मजा आया कि नहीं? मजा आया। देखो सिनेमा असत्य है कि नहीं, मगर उसमें जब ट्रेजिक डेथ होती है मजा आता है कि नहीं आता है? सिनेमा देख के हमको आनंद आता है। इसी तरह से अगर हम इस जगत को और इस देह को अगर असत्य समझ लें, उसके बाद फिर मजा देखो। और सचमुच ये तो असत्य है, सारी की सारी अनात्मा है, अनात्मा असत्य है। असत्य को असत्य जान के फिर उसका आनंद लो ना। भगवान तो त्यक्ता देहम का ये नहीं हुआ कि आपकी जो देह जो असत्य उसको त्याग दो, ऐसा नहीं है। उसके अंदर जो सत्य बुद्धि है उसको छोड़ दो, यही रियल त्याग है, और कुछ नहीं करना है। एक महात्मा के पास में एक शिष्य आया, मुझे आत्मज्ञान चाहिए। तो उसने बोला तुमको त्याग करना होगा। तो बोले ठीक है करेंगे। तो फिर चला गया, फिर वो सोचने लगा क्या त्याग करना है, मैं तो आया हूँ शिष्य बन के आया हूँ, एक दंड है मेरे पास, एक कमंडलू है और कौपीन है, और क्या है, और तो कुछ नहीं, एक कंबल है। तो दूसरे दिन महात्मा के पास गया, मेरे पास तो कमंडलू था उसको छोड़ दिया, अब दंड था उसको भी छोड़ दिया, अब कौपीन है खाली और एक कंबल घर में पड़ा हुआ है। तो बोले महात्मा ने कहा त्याग नहीं हुआ। फिर चला गया तो जाके कंबल भी छोड़ दिया। फिर आया, बोला मेरे पास कुछ नहीं है, बोला अभी भी त्याग नहीं हुआ। फिर चला गया, फिर सोचने लगा और मेरे पास क्या है, एक शरीर ही त्याग करने का। तब शरीर त्याग कर देते हैं, चिता बनवानी शुरू कर दी, इस चिता पर बैठ के शरीर त्याग कर देंगे। तब महात्मा आए, बोले मैंने तो तुमको चिता बनाने के लिए नहीं कहा, शरीर त्याग करने को नहीं कहा, मैंने तो कहा त्याग करना है। बोले किसका त्याग करना है? बोले माइंड का त्याग करना है, चित्त का त्याग करना है। माइंड में अहंकार है, अहंकार का त्याग करना है। तुमको जो है शरीर नहीं छोड़ना है। तो चित्त त्याग ही सर्वस्व है, चित्त त्याग ही सर्वस्व। हम लोगों ने उपदेश सार में देखा था ना, मानसं तु किं मार्गने कृते मानस नैव मानसम मार्गार जवा देखो जस्ट इंक्वायर सोचो देखो मन है कि नहीं। रमन महर्षि कहते हैं खोजो मन है कि नहीं। खोजने से पता लगेगा, इंक्वायरी करने से पता लगेगा मन नाम की कोई चीज ही नहीं है। और सुख दुख कहां होता है? मन में होता है। सारे सुख दुख खत्म हो जाएंगे इन वन गो। और हम क्या करते हैं, दुख आता है हम बाहर की परिस्थिति बदलना शुरू कर देते हैं, ऐसे कर लो वैसे कर लो ये कर लो वो कर लो। तो महात्मा ने कहा मैंने तुमको मन के लिए कहा था मन मया। उसके बाद में कहा भगवान ने कहा कि मन मया होना होगा। मन मया का मतलब क्या हुआ कि आप जो है मन जो है भगवान को पूर्णतया दे। तो ध्यान में हम क्या करते हैं, जो ज्ञान मार्गी हैं वो ध्यान में श्रवण मनन के बाद में वो ध्यान में बैठ जाते हैं। ध्यान में क्या करते हैं, आपने सब त्याग कर दिया। भक्ति मार्ग में क्या करते हैं, 100% भगवान की बातें सुनते हैं, 100% भगवान की लीला, बस और कुछ नहीं सुनना है हमको, केवल भगवान की हमको लीला सुननी है। ये भक्ति मार्ग है। तो भक्ति मार्ग के अंदर नारद भक्ति सूत्र में कहा गया है, एक सबसे छोटा सूत्र है, तनमया दर्शो, यहां मनमया है ना। नारद भक्ति सूत्र के अंदर एक सूत्र है तनमया, मतलब जो आप उसके अंदर तत्मय हो गए, तत्मय हो गए। तत्मय होने का मतलब क्या हुआ, जैसे गुरुदेव कहते थे कि एक चींटी एक केक के अंदर घुस गई, घुस गई तो अब क्या देखती है, ऊपर नीचे चारों तरफ आगे पीछे सब क्या है, केक है। या रसगुल्ला सिरप के अंदर, तो रसगुल्ले के भीतर बाहर दाहिने बाएं चारों तरफ, वैसे ही आपका मन जो है चारों तरफ से केवल भगवान 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 का अगर बना रहे तो मन में आ। फिर कहते हैं मदभावम आगता, तो वो मेरे भाव में आ जाता है। अब बाहर की वस्तु केवल छोड़ देने से काम तो होगा नहीं। देखो बाहर की वस्तु अगर आप छोड़ दोगे, जैसे उस शिष्य सब कुछ छोड़ दिया, तो उससे क्या अज्ञान का नाश हो गया क्या? अज्ञान का नाश नहीं होगा। आप शरीर भी छोड़ दोगे तो आपका अज्ञान का नाश नहीं होने वाला है। तो त्याग का मतलब क्या हुआ, त्याग का मतलब हुआ कि आप सत्य बुद्धि छोड़ दो। संसार के अंदर सत्य बुद्धि को छोड़ देना ही त्याग है। उसके बाद में कहा गया कि बीत राग भय क्रोध, बीत राग, राग अटैचमेंट, क्रोध। देखो क्रोध, राग और क्रोध के अंदर क्रोध सीरियस है, राग जो है ना वो साइलेंट है। आपका कहां कहां अटैचमेंट है केवल आपको मालूम है, दूसरों को नहीं पता लगता है, मगर क्रोध दूसरों को पता लग जाता है। क्रोध सीरियस है। तो राग बीत राग भय क्रोध, मगर क्रोध कैसा होना चाहिए, बोलो क्रोध ईशु बेस्ड होना चाहिए, नॉट व्यक्ति बेस्ड। ईशु बेस्ड मतलब देखो हमारा किसी के साथ में कोई खराब संबंध नहीं है, मगर कोई आदमी कुछ एक बात कहने लगे जो हमको पसंद नहीं है या ईशु हमको पसंद नहीं है, उसको हम क्रोधित हो सकते हैं, मगर दूसरे दिन फिर हम उससे जब मिलेंगे तो हम फिर उससे मित्रवत बात करेंगे। मगर हम क्या करते हैं, हम क्रोध जो है पर्सनल बेस पर ले लेते हैं। हमारे कलकत्ते सेंटर में एक बार गुरु जी आए तो मीटिंग हो रही थी, तो एक व्यक्ति जो है एक पॉइंट को लेके बोलता ही जाए बोलता ही जाए बोलते ही जाए। अब गुरु जी समझ गए, अब छोड़े ही नहीं टॉपिक को, गुरु जी गुस्से हो गए। अब वो आदमी व्यक्ति सोचने लगा कि मैं सेवा इतनी करता हूं और गुरु जी मेरे ऊपर गुस्से हो गए। दूसरे दिन आया तो जब बातचीत हो रही थी, गुरु जी फिर पहले की तरह मित्रवत बात करना शुरू कर दिए। अब वो कंफ्यूज हो गया, कल हमारे ऊपर इतना गुस्सा हुआ और आज ये है, क्या बात हुआ। तो फिर उन लोगों को बताया गया कि देखो आपका जो इशू था वो इशू गलत था, उस इशू के ऊपर में गुरु जी गुस्से हुए, व्यक्तिगत रूप से आपके ऊपर कोई गुस्सा नहीं है। गुरुदेव भी ऐसा ही करते थे, कोई डिबोटी के प्रति ऐसा उनका व्यवहार नहीं था कि वो गुस्सा एक बार हुआ तो उसके सारा जीवन गुस्सा ही गुस्सा, ऐसा नहीं है। ईशु बेस्ड गुस्सा हुआ, हमारी पसंद का नहीं है, या आप ठीक काम नहीं कर रहे हो गलत काम कर रहे हो तब गुस्सा है, गां ठीक हो गया बस चलो फिर से शुरू कर दो काम अपना। तो बीत राग भय क्रोध ये लक्षण जो है ज्ञानी के अंदर जो है स्वाभाविक रूप से रहते हैं, मगर जो साधक को है उसको उसके अंदर एफर्ट से लाने पड़ते हैं, एफर्ट करना पड़ता है, एफर्ट करते 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 वो हैबिट बन जाता है, हैबिट बनते 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 फिर वो स्वाभाविक बन जाता है। तो जितने भी साधक हैं उनको ये सब लक्षण लाने चाहिए। मदभावम आगता, हाँ मदभावम आगता, देखो स्थित प्रज्ञ में भी आया था ये बीतराग भय क्रोध, स्थित प्रज्ञ का लक्षण है, मगर साधक को लक्षण, हम लोग क्या हैं, हम लोग साधक हैं तो हम लोग को ये लक्षण अपनाने हैं, जीवन में उतारने हैं, इसके लिए हमें चेष्टा करनी पड़ती है। तो रियलाइजेशन पर द्वैत नहीं रहेगा, जब हमको ज्ञान होगा तो फिर द्वैत नहीं रह जाता, अभी जैसे द्वैत है ना, हम लोग सबसे सब अलग 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 हैं, रियलाइजेशन में द्वैत नहीं रहता है, फिर किससे राग होगा, अगर अकेला एक ब्राह्मण है तो राग किससे होगा, क्रोध किस पर करेंगे, भय किससे होगा, बोलो किससे होगा, अगर एक ही अकेला व्यक्ति है, अब जैसे हम सेंटर में अकेले बैठे हुए हैं यमुनोत्री में, अब किससे राग होगा, किससे भय होगा, किस पर क्रोध होगा, कोई है ही नहीं तो अकेला अगर ब्राह्मण होगा तो कैसे होगा। अच्छा, ज्ञानी को क्रोध नहीं आता, क्यों नहीं आता है, क्योंकि ज्ञानी की डिजायर ही नहीं है, ज्ञानी कोई डिजायर नहीं है, डिजायर में ऑब्स्ट्रक्शन होगा तभी तो क्रोध आएगा, नहीं तो क्रोध का कोई सवाल ही नहीं है। तो साधना काल में हमें प्रयत्न करके कंट्रोल करना पड़ता है, सिद्ध अवस्था में वो स्वभाव बन जाता है। ऐसा नहीं होता है कि अब जैसे गुरुदेव साउथ इंडियन थे, साधना के पहले, ज्ञान के पहले वो इडली डोसा खाते थे और ज्ञान के बाद में फिर बोलेंगे उनको नॉर्थ इंडियन डिशेस ला के दो, ऐसा परिवर्तन नहीं होता है, जो जो आगे था वही चलता रहेगा, जो आपका स्वभाव है वैसा ही चलता रहेगा। तो साधना काल में प्रैक्टिस हमको करनी पड़ती है, अगर कोई आदमी कहे कि हमने जो है प्रैक्टिस बिना किए ही हम सिद्ध हो जाएंगे तो ऐसा नहीं होगा, कंट्रोल करना पड़ता है, कंट्रोल करना पड़ता है, लक्षणों को लाना मतलब अपने आप को कंट्रोल करना पड़ता है। यदा संघर्ते चायम कुर्मांगानीव सर्वश इंद्रियानी इंद्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, स्थित प्रज्ञ के लक्षण को बताया गया है, ज्ञानी क्या करता है, जहां उसने देखा कि यहां फंसने का टाइम आ रहा है तो क्या करेगा, टॉर्टेज की तरह अपने सारे लिंब को अपने इकट्ठा कर लेता है, तुरंत इकट्ठा कर लेगा। तो वैसे हमें भी कंट्रोल करना है। अच्छा भगवान, लगता है कि आप थोड़ा पार्शियल हो लगता है, आप किसी किसी को मदभाव आगता कर देते हो, पुनर्जन्म नहीं, अच्छा ठीक है तुम्हारा पुनर्जन्म नहीं होगा, अच्छा आप जो है मदभाव आगता होगा ठीक, सबको नहीं देते हो आप, क्यों नहीं देते हो, क्या आप में राग द्वेष है, किसी को पसंद करते हो किसी को नहीं पसंद करते हो, ऐसा है क्या। तो भगवान कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, हमारे में राग द्वेष नहीं है। 11वें श्लोक में भगवान बताते हैं कि क्या बात है, क्यों हम ऐसा करते हैं।
ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्,
तांस्तथैव भजाम्यहम्।
मम वर्त्मानुवर्तन्ते,
मम वर्त्मानुवर्तन्ते।
मनुष्याः पार्थ सर्वशः,
मनुष्याः पार्थ सर्वशः।
ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्, मम वर्त्मानुवर्तन्ते।
ये यथा माम प्रपद्यन्ते तान तथा एव भजामि हम, जो मेरी जैसे भाव से पूजा करता है, जिस भाव से आता है, जिस कामना से आता है, उस कामना को मैं पूर्ण कर देता हूं। शंकराचार्य जी लिखते हैं, जो भक्त जिस प्रकार से, जिस प्रयोजन से, जिस फल प्राप्ति की इच्छा से मुझे भजते हैं या मेरी पूजा करते हैं, उनको मैं उसी प्रकार भजता हूं, उनको उसी प्रकार भजता हूं, उनकी कामना पूर्ण कर देता हूं। अर्थात उनकी कामना के अनुसार ही उनको फल देकर मैं उन पर अनुग्रह करता हूं, क्योंकि उन्हें मोक्ष की इच्छा नहीं होती। अब मंदिर में जाने वाले जितने आदमी हैं सबको मोक्ष तो नहीं चाहिए। आप गए हो कभी भगवान मेरे साथ चलो या मेरे को मुक्ति दे दो? नहीं, कभी नहीं मांगा हमने, कभी नहीं मांगा हमने। तो भगवान कहते मैं क्या करूं, मुक्ति मांगोगे तो मुक्ति मेरे हाथ में है, मैं दे दूंगा। मांगते ही नहीं हो तो हम क्या दें आपको? आप जिस चीज में खुश हो जाते हो मैं वही आपको दे देता हूं। देखो कितने किस्म के भक्त होते हैं। भक्तों की श्रद्धा और उनकी भक्ति भिन्न भिन्न होती है। आप किसी मंदिर के सामने में खड़े हो जाओ, खाली देखो। कुछ लोग गाड़ी से जाते हैं, वहीं से सैल्यूट कर देंगे, निकल जाएंगे बाहर से। कुछ लोग उतर जाते हैं, वहाँ फूल वाले हैं तो उनके पास में डिफरेंट किस्म की डालियाँ होती हैं, 5 रुपये का 10 रुपये का, कोई 5 का लेता है, कोई 10 का लेता है, कोई इतना बड़ा टोकरा लेता है, ऐसे लेके जाता है पूजा करने के लिए। सबकी श्रद्धा अलग अलग है। हम लोग वहाँ शांतिपनी में थे तो वहाँ पर जगदीश्वर मंदिर में लोग सवेरे आते थे। हम लोग की वहाँ पर हुआ करती थी वेदांत के ऊपर में, सवेरे में हम लोग चैंटिंग करते थे, वेद चैंटिंग स्त्रोत्रम वगैरह। तो उस टाइम में कुछ भक्त आते थे, जो उस भक्त में कोई हवन के लिए आता है, कोई अभिषेक के लिए आता है, कभी कभी आता है, कोई रोज आता है अभिषेक के लिए। सबकी देखो श्रद्धा अलग अलग है, सब डिफरेंट डिफरेंट हिसाब से आते हैं। तो भगवान कहते हैं जो जिस भाव से आता है तुमको रोज अभिषेक करना है, आओ करो अभिषेक करो, महीने में एक दिन करना है करो। आप लोग जैसे आज बैठे हो, साल के अंत में एक बार बैठना ठीक है, वैसे ही जैसी आपकी श्रद्धा है वैसे होगा। तो जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी। जब राम जी का स्वयंवर के बारे में जब वहां गए तो वहां पर जब उन्होंने धनुष के पास में जा रहे हैं तो लोगों की भावना सब डिफरेंट है, हैं? कोई उन्हें भगवान मानता है, कोई उनको शत्रु मानता है, कोई उसके अंदर दूसरा आरोप करके रखा हुआ है। डिफरेंट डिफरेंट लोग डिफरेंट डिफरेंट किस्म के भाव से जानते थे, कोई पिता रूप, कोई काल रूप, ये मेरा काल आ गया। भगवान कृष्ण के टाइम में भी ऐसा ही था लोगों का। कहीं कहीं पर गोप्य कामात, गोपी लोग जो है उनकी कामना दूसरी थी। भयात कंस, कंस जब कृष्ण को देखता था भय, गोपी चाहती थी कि बराबर हमारे पास रहे। देखो उनकी भावना अलग है। कंस चाहता था अरे मेरी मृत्यु आ गई है तो। कई राजा लोग जो है वो उनसे द्वेष करते थे, शिशुपाल द्वेष करता था, चेदी नरेश द्वेष करते थे, और संबंधात वार्ष्णेय, वार्ष्णेय कुल वाले वो समझते थे ये तुम्हारे रिलेटिव है, संबंधी है हमारे। वसुदेव सुतम, वसुदेव के सुत वो बोलते हैं मेरा पुत्र है। कंस चानुर मर्दनम, कौन सर चानुर, वो उसको दूसरे भाव से देखते थे। देवकी परमानंद, देवकी को परमानंद दिया उन्होंने। कृष्णम बंदे जगत गुरु, बाकी जगत के लिए क्या है, कृष्ण है, गुरु है, जगत गुरु है। तो सबके डिफरेंट डिफरेंट भाव होते हैं। भगवान सोचते हैं कि सब तो मेरे बारे में ही सोच रहे हैं ना, चाहे बैर से सोच रहा हो, चाहे गाली देता हो। कृष्ण को शिशुपाल गाली देता गया, 100 गाली दी। भगवान कहते हैं मेरे को ही तो सोच रहा है, जैसे भी सोच रहा है ये इनके प्रकार है, मेरे बारे में ही सोच रहा है ये। भगवान कहते हैं मैं उसी में खुश हूं, मेरे बारे में सोच रहा है बस बस उसी में खुश हूं और मेरे को कुछ नहीं चाहिए। तो अर्जुन का भाव क्या था, सखा भाव था। तो भगवान कहते हैं मैं भी उनका सखा हूं, जैसा आपका भाव है वैसे हम हैं। तो को भगवान कैसे हैं, तो भगवान बोलते हैं एक दर्पण की तरह, मिरर, मिरर देखा आपने? हाँ आपने सबने देखा। एक व्यक्ति के पास एक मिरर था, उसको नहीं पता था ये मिरर है। हाँ, उसको उसके पिता ने दिया था, उसको ताले बंद करके वो रखा था उसने, तो बीच बीच में निकालता था, उसको देखता था। तो उसकी पत्नी ने एक बार देखा कि यह बीच बीच में निकालता है, देखता है, फिर ताले में बंद कर देता है, इसमें कुछ जरूर है कुछ। तो उसने पूछा क्या है, तो उसने बोला मेरे गर्लफ्रेंड की तस्वीर है। बोला तुम देखोगी? बोला हाँ। उसने देखा, बोला हाँ इसमें तो तस्वीर है, गर्लफ्रेंड की तस्वीर है, उसको भी नहीं पता नहीं है मिरर है। तब वो झगड़ने लगे कि मेरे को छोड़कर तुम्हारे पास में कोई और भी है, देखो इसके अंदर। एक महात्मा के पास में गए। अच्छा, महात्माओं को भी पता नहीं था ये मिरर है। महात्मा ने देखा, उसने देखा, कह रहे ये तो मेरे से ही बड़ा कोई महात्मा है इसमें। तब फिर एक ज्ञानी व्यक्ति आया, उसने कहा क्या बात है भाई, आप लोग क्यों झगड़ते हो? बोला ये इसके अंदर देखो पता नहीं क्या क्या हो जाता है। तो बोला ये दर्पण है, आप जैसे हो वैसा इसके अंदर में नजर आता है, आप जैसे हो वैसा नजर आता है। सबको एक लाइन में खड़ा कर दिया, पति को, पत्नी को, महात्मा को, और खड़ा करके खुद भी खड़ा हो गया। बोलो चारों देखो इसके अंदर, चारों है कि नहीं? चारों है। तब पता लगा इसको दर्पण कहते हैं। तो भगवान दर्पण की तरह है, आप जिस हिसाब से आते हो, जिस भाव से आते हो, उस भाव से सेवा कर देते हैं आपकी। आपको मुक्ति नहीं चाहिए, आपको कुछ फल चाहिए, बस ले लो अपना फल ले लो। लोग स्पेसिफिक पर्पज के लिए जाते हैं। अब भगवान आगे जाके बताएंगे कि 99.9% लोग जो है ना अनात्म वस्तु के लिए आते हैं। अनात्म वस्तु, अनात्म वस्तु आप लोग बता ना, संसार की चीजें, एक घर दे दो, एक मकान दे दो, मेरा स्वास्थ्य दे दो, मेरा रोग निकाल दो, पैसा दे दो, बीवी दे दो, बच्चे दे दो, सब अनात्मा है। भगवान उसको कहते हैं अल्प मेधसा। बोले इनकी बुद्धि छोटी है, इनको अभी तक ये नहीं पता है कि आत्मा और अनात्मा में कौन परमानेंट है, कौन सुखदाई है, कौन दुखदाई है। सब दुखदाई चीजें मांगने आते हैं अल्टीमेटली। सब दुखदाई चीजें। गुरुदेव कहते थे मिरर डज नॉट कीप एनीथिंग, रिफ्लेक्ट एवरीथिंग, रिजेक्ट नथिंग, एक्सेप्ट एवरीथिंग, है ना? ये भाव एक बार फिर सातवें अध्याय में आएगा। यो यो याम याम तनु भक्त श्रद्धा श्रद्धा अर्चित में इच्छति तस्य तस्य अचलाम श्रद्धाम तामेव विदाद्महम हमें। जिसकी जैसी श्रद्धा है मैं उसको श्रद्धा को अचल कर देता हूं। आपकी जैसी श्रद्धा है भगवान के अंदर, भगवान कहते ठीक है अचल। तुम्हारी श्रद्धा गणेश में, अचल गणेश में ही आपको सब मिल जाएगा। आपको छठ पूजा में करना है, छठ पूजा अचल कर दो। आप वैष्णो देवी के भक्त हो, चलो वैष्णो देवी में अचल श्रद्धा, आप बराबर वैष्णो देवी जाया करो। आपको रामेश्वरम जाना है, चलो रामेश्वरम जाओ। केदारनाथ जाना है, वहां श्रद्धा है, वहां श्रीनाथ में श्रद्धा है, ठीक है। जिसकी जहां जो श्रद्धा है, बोले मैं उसको उसी हिसाब से वहां से दे देता हूं अचल, आपकी श्रद्धा बनी रहे। भगवान जो चाहते वही देते थे। बोले मेरे को मोक्ष कोई चाहता नहीं, मैं क्या करूं, कैसे दे दूं? अर्जुन सोच रहा है कि आप इतना कुछ दे सकते हो, मुक्ति दे सकते हो, मदभाव आगता कर सकते हो, पुनर्जन्म नहीं होगा, तो आप सबको क्यों नहीं देते हो? तो भगवान उसका सफाई देते हैं कि मेरे पास जो मांगने आता वही तो दूंगा, आप जो मांगोगे वही देता हूं। भक्त कितने किस्म के हैं? चार किस्म के भक्त हैं। एक फलार्थी है, पावर, पोजीशन, वेल्थ चाहता है, सब फल के अर्थी हैं, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, फलार्थी, ऐसे भक्त। और दूसरे आर्थ भक्त होते हैं। आर्थ भक्त मतलब दुख है, शरीर में कष्ट है, कुछ और प्रॉब्लम है, इनकी संख्या सबसे ज्यादा है, फलार्थी और आर्थ। ये दो किस्म के भक्त जो है सबसे ज्यादा है, 99% है। और बाकी दो कौन है? बोले मुमुक्षु है, ज्ञानी है। मुमुक्षु क्या है? मुमुक्षु चाहता है कि भगवान किसी तरह से मेरे को ज्ञान मिल जाए, कुछ व्यवस्था कर दो। तो भगवान उसके ज्ञान की व्यवस्था कर देते हैं। चलो ठीक है, ग्रेज लेक में चिन्मय मिशन है, तुम्हारा एड्रेस क्या है बताओ, एड्रेस पूछ के चिन्मय मिशन का एड्रेस बता देंगे उसको कि जाओ मूंछू तुमको यहाँ जाना है, क्योंकि मूंछू को पता नहीं है कि सबसे अच्छी वेदांत की पढ़ाई सारी दुनिया में केवल चिन्मय मिशन में होती है। अगर आपको नहीं पता है तो अमिताभ बच्चन से पूछ लेना कौन बनेगा करोड़पति के अंदर, एक बार ये प्रश्न था कि सबसे अच्छी वेदांत की पढ़ाई कहाँ होती है, चिन्मय मिशन का नाम आया था। तो भगवान बताएंगे आपका एड्रेस कहाँ है, नियरेस्ट सेंटर क्या है, आपको डायरेक्ट कर देंगे। मुमुक्षु और ज्ञानी क्या चाहता है, ज्ञानी मुक्ति चाहता है, उसको मोक्ष दे देते हैं, बोले तो मुक्ति ले लो। देखो नचिकेता आत्मज्ञान पाना चाहता था और उसको यमराज दुनिया भर की दुनिया की सारी चीजें देने को तैयार थे, ले लो नाच गाने अप्सराएं ये हमारे व्हीकल चैरियट वगैरह सब ले लो, प्लस जितने दिन तुमको रहना है, जितने दिन तुमको इस पृथ्वी पर रहना रहो, क्योंकि मैं यमराज हूं, मेरा भी लाइफ है, मगर जब तक मैं इस चेयर पर हूं तुम्हारे पास नहीं आऊंगा, तो तुमको 1,00,000 वर्ष जीना है जियो, मगर दूसरा यमराज आएगा तो आ सकता तुम्हारे पास, मैं नहीं आऊंगा। तो नचिकेता ने कहा मेरे को ये सब नहीं चाहिए, मेरे को आत्मज्ञान चाहिए, मेरे को बार बार जन्म नहीं लेना है, मेरे को ये भोग वगैरह नहीं लेने हैं। फलार्थी, फलार्थी का एग्जाम्पल आपको ध्रुव में मिलेगा। ध्रुव ने पूजा की थी, हमको ध्रुव लोक चाहिए, ऐसा फल चाहिए, पावर पोजीशन वेल्थ चाहिए, भगवान ने ध्रुव दे दिया उसको, ले लो। मुमुक्षु नचिकेता हो गया। ज्ञानी सन्यासी सुखदेव हैं, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार हैं, इन्होंने जीवन मुक्ति मांगी, भगवान लो जीवन मुक्त हो जाओ, जीवन मुक्त हो जाओ। आर्तभक्त गजेंद्र आर्तभक्त है, दुखी था, ग्रह ने मेरे को पकड़ लिया है, मेरे को छुड़ाओ। भगवान कहते हैं कि मेरे में राग द्वेष नहीं है, राग द्वेष के कारण या मोह के कारण तो मैं किसी को भी नहीं भजता, मेरे में कोई राग द्वेष नहीं है, लोगों में हो सकता है, मेरे पास नहीं है, मेरे हृदय में सबके प्रति प्यार है, सबके प्रति हमारा प्यार है। बाली ने कहा था मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, भगवान को राम को कहता है कि मैं ही जो है आपका बैरी हूं, सुग्रीव तुमको प्यारा है, तो भगवान कहता है पहले वो आया वो मित्र रूप में आया तो मित्र हो गया, तुम बैरी रूप में आए तुम बैरी हो गए, बाद में पता लगा उसको कि नहीं नहीं भगवान ऐसे नहीं है। तो भगवान कैसे हैं, कामधेनु है, कल्पतरु है, आप जो मांगते हो वही देने को तैयार है, वो तो खड़े ही हैं दिन रात वहां पर देने के लिए खड़े हुए हैं। महात्मा लोग एक और एग्जाम्पल देते हैं भगवान कैसे हैं, अग्निवत हैं, अग्निवत लाइक ए फायर, कैसे बोले कि आप जो है फायर को अगर आलिंगन करना चाहते हो तो क्या करेगी फायर, नाश कर देगी आपका, जला के राख कर देगी आपको। उसी फायर के ऊपर में आप खाना बनाना चाहते हो, खाना बना लो, आपको आग सेंकना है आग भी सेंक लो, डिस्टेंस पर रहो। तो उसी तरह से भगवान भी ऐसे ही हैं कि आपको क्या चाहिए, आप जैसा चाहते हो वैसा भगवान कर देंगे। अच्छा भगवान आपने तो सब हमें ठीक से बता ही दिया, किंतु इसके बाद में आप जो ये बताते हो ना, मम वर्तमान उवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वस्व, तो ये तो आपकी एक बात तो समझ में आ गई, जो आपके पास मंदिर में आते हैं वो तो ठीक है आपके पास आ रहे हैं, मगर बहुत लोग हैं मंदिर के पास नहीं आते, बाहर से भी नहीं आपको सलाम ठोकते हैं, ऐसे भी बहुत है, इज इट नॉट सो, बहुत लोग नहीं जाते हैं भगवान के पास। जो आदमी आनंद में रहता है, जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिसके अभी पुण्य फल रहे हैं, वो तो नहीं जाएगा भगवान के पास में, मंदिर नहीं जाएगा वो। देखो ये हमारी अपनी बात है, हम कब जाते हैं मंदिर में तो आप ये कैसे कह दिए मम वर्तमान वर्तनते मनुष्या पार्थ सर्वस, बोले सारे के सारे पुरुष मेरी तरफ आ रहे हैं, आपकी तरफ आ रहे हैं, कैसे हुआ ये? ये तो बात सही नहीं है आपकी, हमको तो दिखाई नहीं पड़ता ऐसा। हम तो भगवान कहते हैं कि अरे भाई जीवन में सब लोग क्या चाहते हो, सुखी तो चाहते हो, तो सुख का स्रोत क्या है? मैं ही हूं, तो किस तरफ आ रहे हो तुम? जो आदमी मंदिर नहीं जाता है वो क्या सुख नहीं चाहता है क्या? सुख चाहता है। तो सुख का सोर्स कौन है? बोले मैं ही हूं, तो मेरे पास ही तो आ रहे हैं आप। ये एक वैज्ञानिक है, वो रिसर्च कर रहा है, रिसर्च करके वो शोधन कर करके निकालना चाहता है सत्य क्या है इसका, इस वस्तु का सत्य क्या है। तो भगवान कहते हैं अरे सच्चित आनंद तो मैं ही हूं, सत्यम ज्ञानम अनंत तो मैं हूं। वो सत्य की तो खोज कर रहा है साइंटिस्ट, किस तरह आ रहा? अरे मेरे पास आ रहा है वो। तो जरूरी नहीं है कि वो उसको जाना है मंदिर में जाके पूजा करनी है, वो सत्य की खोज कर रहा है, सत्य तो मैं हूं। तो इस तरीके से हर व्यक्ति जो है आनंद चाहता है, सब हर व्यक्ति मेरे पास ही आ रहा है। अच्छा भगवान, ये तो आपका समझ में आ गया, मगर यदि राग और रागादि दोषों का अभाव होने के कारण सभी प्राणियों पर आप ईश्वर दया समान है, तो आप सब फल देने में समर्थ भी हैं, तो फिर सभी मनुष्य मुमुच्छ होकर सारा विश्व वासुदेव रूप इस प्रकार ज्ञान से केवल आपको ही क्यों नहीं बचते? अगर आप जो कह रहे हो ठीक है कि आप पावर पोजीशन वेल्थ मुक्ति सब दे सकते हो, सब कुछ आप दे सकते हो, आप में राग द्वेष भी नहीं है, ये नहीं कि मैं इनको फेवर करता हूं उनको फेवर नहीं करता, ऐसा भी नहीं है, फिर लोग आपके पास क्यों नहीं आते हैं बताओ? है ना प्रश्न? अच्छा, फिर लोग आपके पास क्यों नहीं आते? नेक्स्ट श्लोक।
कांक्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा।
सब लोग क्या चाहते हैं? सभी कर्मफल से सिद्धि चाहते हैं। सिद्धि मतलब कर्मफल, सभी कर्मफल चाहते हैं। उनके विषय प्राप्त करने की प्रबल इच्छा है सब में, विषय ये भी हो जाए ये भी हो जाए, एक मकान दो मकान चार गाड़ी छह गाड़ी, इतना धन इतना स्टॉक। लोग हंसते हैं स्टॉक के नाम से क्यों? अच्छा, मगर कोई भक्ति मुक्ति आत्मज्ञान या भगवत दर्शन नहीं चाहता है। देखो मेजोरिटी आप लोग जो इसी में लगे हुए हैं, ये विषय मिल जाए ये विषय मिल जाए, इसके लिए कर्म करो, परिश्रम करते हैं और फल की भी आशा करते हैं, फल मिल भी जाता है कई बार, अगर आपका प्लानिंग वगैरह एग्जीक्यूशन ठीक हो तो फल मिलता भी है, मगर सब जो है कर्म के अंदर ही लगे हुए हैं, क्योंकि उनको विषय चाहिए। विषय के लिए क्या करते हैं? यजंत ये देवता, यह मतलब यहां इस जगत में, यजंत मतलब पूजा करते हैं। किसकी देवता, किसकी पूजा करते हैं? देवता की। कौन से देवता है? क्षुद्र देवता। कौन है क्षुद्र देवता? बोल इंद्र है, अग्नि है, चंद्र है, ये है वायु। आगे के जमाने में लोग ऐसे पूजा करते थे, इनसे ये चाहिए इनसे ये चाहिए इनसे चाहिए, तो छोटे छोटे देवताओं की पूजा करते हैं। ये छोटे छोटे देवता क्या है? भगवान बोलते हैं ये मेरे डिपार्टमेंट है, सबको हमने पावर दिया हुआ है कि तुम्हारे पास में पिटीशन आएगी अगर ये ठीक होगा, उसने अगर इतने पूजा दी है, इतने रुपए की पूजा दी है, सब किया है, पंडित ने अगर मंत्र ठीक पाठ किया है तो तुम उसको ये फल दे देना, बस तुम्हारा काम इतना ही है, उससे ज्यादा नहीं देना। सब डिपार्टमेंट का अपना पावर है, उसके हिसाब से उसकी पूजा है, पूजा के हिसाब से आप काम कर देना, तो बोलते हो जाता है। तो सारे फल जो है यजन करने से मिल जाते हैं, पूजा करने से मिल जाते हैं। भगवान कहते हैं मुझे कोई प्राप्त नहीं करना चाहता, सारे के सारे अनित्य सुख में ही खुशी हैं। आप विषय चाहते हो, विषय तो अनित्य है ना, आपको घर चाहिए, अरे भाई 100 साल रहेगा, 200 साल रहेगा, फिर टूट जाएगा वो, तो नित्य हुआ ना अनित्य हुआ? आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, अच्छा ठीक है, फिर भी शरीर तो अनित्य है ना, बच्चे हो जाए अनित्य है। तो भगवान कहते हैं चलो आप मांगते हो अनित्य, मांगते हो तो अनित्य ले लो। क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धि भवति कर्मजा, मनुष्य लोक क्या है? बोला कर्म भूमि है, ये तो कर्म भूमि है, बोले दूसरी सब भोग भूमि है। मगर जैसे ही इन्होंने क्षिप्रम वर्ड यूज कर दिया, शब्द यूज किया, क्षिप्रम मतलब जल्दी, इसका मतलब होता है कि दूसरे लोक में भी कर्म होते हैं और वहां कर्मफल देरी से मिलता है, यहां जल्दी मिल जाता है। महात्मा लोग के दर्शन है, और महात्मा कहते हैं देखो दक्ष प्रजापति, उसने यज्ञ किया था कि नहीं किया था? अपने प्रमोशन के लिए उसने यज्ञ किया, दक्ष प्रजापति ने, सती को देह छोड़नी पड़ गई, वहां भी कर्म है। बोलते हैं यहां पर इस मनुष्य लोक में जो है कर्म का फल जल्दी मिल जाता है, 1 महीना काम करो 1 तारीख को फल मिल जाता है, होता है कि नहीं? हमारे यहां क्लीनिंग लेडी आती है या कुकिंग लेडी आती है, 1 दिन काम करो पैसा ले लो तुरंत फल। अगर आपका जो है संकल्प स्ट्रांग है, प्लानिंग आपकी अच्छी है और एग्जीक्यूशन अच्छा है तो फल आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? अगर आपका संकल्प ठीक है कि हम निश्चित कर लिया हमको जो है ये एग्जाम पास करना है, आपने प्लानिंग भी कर दी अच्छी तरह से, ऐसे ऐसे हम पढ़ेंगे, उसके बाद एग्जीक्यूशन भी कर दिया, तो आपको डिग्री मिलेगी कि नहीं मिलेगी? जरूर मिलेगी। मगर स्पिरिचुअल सीकर जो है इन 3 चीजों को छोड़कर एक चौथी चीज साथ में जोड़ता है, वो क्या है? अब तो आपको बोलना चाहिए, वो सब कुछ ईश्वर को समर्पित करके करता है। हाँ वो कर्मयोग करता है, वो भी करेगा, वो कर्मयोग करेगा, वो संकल्प के स्टार्टिंग से लेकर प्लानिंग एग्जीक्यूशन सब समय भगवान को याद रखता है, भगवान को भी एक पार्टी बना लेता है कि आप हमारे साथ में रहोगे, सब कुछ ईश्वर अर्पण के साथ वो करता है। अगर कर्म ईश्वर अर्पित नहीं हुआ तो क्या होगा? कामे कर्म हो जाएगा, वो आपको ऐसे कहना होगा। अगर ईश्वर समर्पित फर्म नहीं हुआ, कर्म योग नहीं हुआ, तो क्या हुआ फिर? कामे कर्म हो जाएगा, कामे कर्म हो जाएगा तो आप फंस गए, आप वासना में आ गए। तो ईश्वर समर्पित करके करना होगा। तो लोग भगवान की तरफ नहीं जाते क्योंकि वह अनसीन है, अननोन है, मगर लोगों को कर्म के ऊपर फेथ है, रिजल्ट आता है, तुरंत आता है। इसलिए भगवान से ज्यादा लोगों को कर्म के ऊपर में ज्यादा विश्वास है। तो जनता के अंदर कुछ लोग जो है कटाक्ष करते हैं, दैव दैव आलसी पुकारा, जो जो आलसी लोग है ना वो देवता देवता, अरे दो मेरे को दो मेरे को दो, ऐसा करते हैं। अच्छा एक इसका सेकंड मीनिंग है, ये तो देखो आधी दैविक पूजा हो गई, आपको कुछ चाहिए तो आप मदर सरस्वती के पास में जाते हो, कि आप जो है सरस्वती के पास में जाते हो, कि सिद्धि चाहिए गणेश के पास में जाते हो, मतलब डिफरेंट देवताओं के पास में आप जाते हो, आधी दैविक हो गया। आधी भौतिक लेवल पर भी अगर आपको बिजनेस में कुछ करना हो, अगर आपको किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जाना हो, तो जिसके पास में, मिनिस्टर के पास में या जिस सेक्रेटरी के पास में कि जिस ऑफिसर के पास में वो अधिकार है, तो आपको उसकी पूजा करनी पड़ती है कि नहीं? आपको उसकी पूजा करनी पड़ती है तो आपका काम हो जाता है। देखो आदि भौतिक है ये, आदि भौतिक। एक आध्यात्मिक होता है, आध्यात्मिक हमारी हर इंद्रियों का देवता है कि नहीं? तो उन देवता को पसंद जो चीज है वो अगर आप दे दो तो वो देवता पसंद हो जाते हैं। तो यहां पर जो देवता की बात हुई है वो आदि दैविक और आदि भौतिक देवता की बात है, यहां पर आध्यात्मिक देवता की बात नहीं है। उसके बाद में यहां कहते हैं, शंकराचार्य जी कहते हैं, जो अन्य देवता को इस भाव से उपासना करता है कि वह देवता दूसरा है, जो इस भाव से पूजा करता है कि देवता दूसरा, वैसे मानते बराबर ही हैं कि हम देवता के बराबर तो है नहीं, हम देवता को तो अपने से सुपीरियर मानते हैं ना, तो सुपीरियर हैं बोल के तो हम उनके पास जाते हैं, और मैं उपासक हूं दूसरा हूं, वह कुछ नहीं जानता, जैसे पशु होता है वैसे ही वह देवताओं का पशु है। देखो हम जब मांगने जाते हैं तो हम देवताओं के पशु हैं, आप कैसे पशु हो गए? देखो पशु को हम जब घास देते हैं ना तो पशु हमारे लिए काम करता है, करता है कि नहीं करता है? उसी तरह से देवता आपको घास देते हैं, थोड़ा सा क्या घास दिया, आपने पेटिशन दिया, आपको काम हो गया, तो आप फिर उसकी पूजा में लगे रहते हो, नहीं लगे रहते हो, तो आप वो देवता के पशु हो गए। अच्छा, तो मनुष्य लोक में शास्त्र का अधिकार है, यानी शास्त्र को फॉलो करो और आपकी जो आकांक्षा है वो आपकी पूर्ण हो जाती है, और वो यहां पर क्षिप्र हो जाती है। आपको स्वर्ग जाना है, चलो आप कर्मकांड कर लो, आपको स्वर्ग मिल जाएगा। अच्छा भगवान आप कहते हो तो ठीक ही है, तो मनुष्य को कर्म में भी विश्वास है, भगवान में नहीं है, इसलिए लोग भगवान में मंदिर में या भगवान की तरफ लोग नहीं जाते हैं। अब समझ में आया आपको कैसे शुरू हुआ था? पहले अर्जुन ने मन में प्रश्न आया कि आप मेरे ख्याल से राग द्वेष है सबको जो है आप मुक्ति नहीं देते हो, आप कहते हो खाली आपका जो है मदभावम आगता कहते हो, पुनर्जन्म न इति पुनर्जन्म नहीं होगा, सबको क्यों नहीं देते हो? इसका मतलब आप में थोड़ा पार्शियलिटी है, किसी को आप मानते हो किसी को नहीं मानते हो। ब्राह्मण कहते नहीं नहीं ऐसा नहीं है, लोग आते नहीं मेरे पास, मैं क्या करूं, लोग सब मेरे पास अनात्म वस्तु के लिए आते हैं, कोई भक्ति नहीं मांगता है, कोई मुक्ति नहीं मांगता है, मैं क्या करूं, जो मांगते हैं वो दे देता हूं, मगर मैं जानता हूं सब मेरी तरफ आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, ये सब सुख चाहते हैं इसलिए मेरी तरफ आ रहे हैं। फिर अर्जुन के मन में एक शंका है कि अच्छा अगर ऐसा है तो अगर आप इतना कुछ दे सकते हो तो लोग आपकी तरफ आते क्यों नहीं है? बोलते हैं कर्म फल जो है ना बहुत जल्दी मिल जाता है, लोग उसमें ज्यादा विश्वास करते हैं, फटाफट कर्म फल मिल जाए। अब भगवान की भक्ति करने से कब मिलेगा पता नहीं, प्रेमल जी तो अभी कह देंगे अनेक जन्म, अनेक जन्म भजनाथ, बहुत जन्म बीत जाएंगे, इतना हमारे में धैर्य कहां है, धैर्य नहीं है हमारे में, तो हम कर्म करते रहते हैं कर्म करते रहते हैं, मगर वही कर्म अगर ईश्वर को अर्पित करके करें तो मन शुद्ध होता जाएगा, और अगर हम नहीं करेंगे तो मन अशुद्ध होता रहेगा, वासना बढ़ती रहेगी, इंप्योरिटी जाती रहेगी। अब प्रश्न आता है किसको क्या कर्म करना चाहिए? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किसको क्या कर्म करना चाहिए, सब कर्म सबके लिए नहीं है। अब यहां पर हमारा जो है भगवान बोलने जा रहे हैं कि हमने जो है चातुर्वर्ण मैंने बनाया है, भगवान ही बोलेंगे चतुर्वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र मैंने बनाया है। एक देखो जातिवाद है और एक है जाति व्यवस्था, भगवान ने जाति व्यवस्था बनाई कि इस यूनिवर्स को चलाने के लिए जो हमको चार किस्म के लोग चाहिए, थिंकर चाहिए, एग्जीक्यूटर चाहिए, फाइनेंसर चाहिए, वर्कर चाहिए, तब तो चलेगा। अब जो थिंकर हैं, जो सीईओ हैं, वो तो वर्कर का काम नहीं करता है, हो सकता है सारी फैक्ट्री के वर्कर के जितनी वेतन हो उससे ज्यादा उसका वेतन हो, ही इज अ थिंकर दैट्स ऑल, उसने बता दिया ये आपको करना है, उसके बाद में एग्जीक्यूटर हैं, उसके बाद फाइनेंस डिपार्टमेंट है, पैसे चाहिए, वो फाइनेंस लेके आएंगे, सब कुछ इकट्ठा हो गया, आप किसी को तो प्रोडक्शन करना है। उसी तरह इस सारे संसार को चलाने के लिए भगवान को भी चार किस्म के आदमी चाहिए। तो कंपनी में भी चार किस्म के आदमी हैं, यूनिवर्स को चलाने के लिए भी चार किस्म के आदमी चाहिए, और हमारे शरीर में भी चारों हैं। ब्राह्मण कौन है आपके शरीर में? इसको ब्राह्मण कहते हैं, थिंक टैंक, हेड ऑफिस, उसके बाद में एग्जीक्यूशन बैंक, फाइनेंस डिपार्टमेंट, जो कुछ आपने खाया सब जगह उसको देना, और टू लेग्स शूद्र सर्विंग। ये ना हो तो आप चल नहीं पाओगे, इस सबको सर्व करता है। तो भगवान ने जो है ये व्यवस्था बनाई है, मगर हमारे पॉलिटिकल नेता लोग इसको जो है जातिवाद में ले गए, कास्टिज्म में ले गए, और ले जाके अपना पॉलिटिक्स के अंदर में इस तरफ चले गए तो इनका वोट मिल जाएगा, उस तरफ चले गए तो इनका वोट मिल जाएगा, तो अपने स्वार्थ के लिए उन्होंने ऐसा सब कर दिया। और इतना दूर बढ़ गया कि जो है मध्य युग के अंदर भारत चला ही गया, कास्टिज्म के अंदर ही खत्म हो गया, दूसरे देश आ गए यहां पर राज्य करने के लिए। तो अगर हम ठीक से इसको अगर समझें, भगवान ने कैसे ये जाति व्यवस्था बनाई, क्या सोच के बनाई, इसके पीछे क्या विज्ञान है, अगर हम जान लें तो फिर चीजें आपको बहुत क्लियर नजर आएंगी, एकदम साफ। जो भगवान ने किया सचमुच ठीक किया है, उसके बिना काम नहीं चल सकता। आप किसी वर्कर को बोलो कि यू बिकम ए थिंक टैंक, बताओ क्या होगा? अब एक बार एक मोची को राजा बना दिया ना, तो उसने बोला चमड़े के सिक्के चलेंगे, उसने चमड़े के एक दिन के अंदर चमड़े के सिक्के चला दिए उसने, मोची को राजा बना दिया एक बार एक दिन के लिए। बोलो क्या करना चाहिए? बोले चमड़े के सिक्के बना दो, चमड़े के कॉइन बना के उसने चालू कर दिया। तो ऐसे तो नहीं होगा। तो चातुर्वर्ण क्या है इसको हम लोग अब अगले क्लास में नेक्स्ट ईयर में देखेंगे।
पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः।